ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। देश भर में किसी भी प्रकार की हत्या, हिंसा और सामाजिक अपराध को नियंत्रण करने में सरकार है प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। देश भर में आज 4,392 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने। 3,522 हुए संक्रमण मुक्त। 21 संक्रमितों की हुई मौत। कोरोना वायरस के इलाज में प्रयोग की जाने वाली रेमडेसिविर दवाई की आयात एवं बिक्री वितरण के लिए 3 कंपनियों को दी गई अनुमति। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला, 14 की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने स्पष्ट किया कि देश में किसी भी प्रकार की हत्या, हिंसा और सामाजिक अपराध को नियंत्रण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रहरी प्रधान कार्यालय में आज आयोजित 65वें प्रहरी दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने सभी सुरक्षाकर्मियों से इस प्रकार की अवांछित क्रियाकलाप के विरूद्व सक्रियता और निर्भयता के साथ काम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ओली ने एसिड आक्रमण के साथ साथ बलात्कार के विरूद्व नए कानून को लाने और कड़े से कड़े कदम चलाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री ओली ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए उच्च सतर्कता अपनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सभी देशवासियों से सुरक्षा के सभी मापदंडों को अपनाने का आग्रह किया। साथ ही प्रधानमंत्री ओली ने कोविड-19 के संक्रमण की अवस्था में स्वास्थ्य कर्मियों तथा सुरक्षा कर्मियों द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। मौके पर गृहमंत्री राम बहादुर थापा ने कानून प्रदत्त जिम्मेदारियों को पूरा करने के क्रम में विभिन्न व्यवधान और सीमित स्रोत साधन के बावजूद नेपाल प्रहरी द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। नेपाल में कोरोना वायरस के सक्रिय संक्रमितों की संख्या 37,000 से ऊपर हो गई है। सक्रिय संक्रमितों में से 25,046 लोग होम क्वारंटीन में रह रहे हैं, जबकि 12,336 लोग अस्पताल और अन्य संस्थागत आइसोलेशन केंद्र में रह रहे हैं। इसी तरह आज 4,392 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इनमें से काठमांडू में 1,784, ललितपुर में 374 और भक्तपुर में 244 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी तरह आज 3,522 लोग कोरोना संक्रमण मुक्त हुए हैं। इसके साथ ही देश भर में कोरोना संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या 88,040 हो गई है। आज कोरोना संक्रमण के कारण 21 लोगों की मौत होने के बाद संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 715 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम ने दी। इसी बीच मंत्रालय ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित काम में आने का निर्देश किया है। बहरहाल इसमें उन लोगों को आने के लिए मना किया गया है जिनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। अस्पताल में बढ़ते मरीजों की संख्या के मद्देनजर ऐसा निर्णय किया गया है। ये जानकारी प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम ने दी। सरकार ने कोरोना वायरस के इलाज में प्रयोग की जाने वाली रेमडेसिविर औषधि का आयात और बिक्री वितरण करने के लिए 3 कंपनियों को अनुमति दी है। इनमें से 2 नेपाली और 1 भारतीय कंपनियां हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉ समीर कुमार अधिकारी ने दी। जिन कंपनियों को बिक्री वितरण की अनुमति दी गई है उनमें इति फार्माकेम डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड ललितपुर, सिनर्जी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड काठमांडू और भारत की हेट्रो लैब्स लिमिटेड शामिल हैं। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी समक्ष 4 संवैधानिक आयोग ने प्रतिवेदन पेश किया। जिन संवैधानिक आयोग ने प्रतिवेदन पेश किया उनमें राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, राष्ट्रीय समावेशी, मदेशी और थारू आयोग शामिल हैं। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने दी है। आज 40वीं विश्व खाद्य दिवस हमारी पहल दीर्घकालीन कृषि स्वास्थ्यवर्धक आहार के मूल नारा के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाया गया। इस अवसर पर शुभकामना संदेश देते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि नेपाल में गरीबों के मद्देनजर करते हुए किसी को भी भूखा न रहने देने और भूखा न मरने देने की व्यवहारिक कोशिश को आगे बढ़ाने की बात कही। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइल को डाटा पनि हामीले चलाको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
*14/15 हेस डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाकी समाचार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने कैलाली के सीताराम सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष राम प्रसाद राणा को 80,000 रिश्वत लेने के अभियोग में गिरफ्तार किया है। सब डिवीजन वन कार्यालय तारानगर कैलाली ट्रैक्टर चालक सहित काठ बरामद किया गया था। इस पर कार्यालय के रेंजर राम अवतार चौधरी के मुकदमा मिलाने के लिए बिचौले की भूमिका निर्वाह करने पर राणा को गिरफ्तार किया गया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल ठीक होकर घर लौटे हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद बीते गुरुवार के दिन धुम्रबारह स्थित हैम्स अस्पताल में इलाज के लिए नेता खनाल को भर्ती किया गया था। ये जानकारी उनके स्वकीय सचिव कृष्ण भट्टराय ने दी है। सप्तरी जिला के संपूर्ण शक्तिपीठों एवं मंदिर परिसरों में प्रवेश निषेध किया गया है। आज की जिला समिति की बैठक में पर्व त्योहारों के मद्देनजर हो सकने वाली भीड़ भाड़ के कारण आज रात 11 बजे से मार्कशीट 7 गति तक के लिए निषेध किया है। ये जानकारी प्रशासकीय अधिकृत आनंद कुमार ठाकुर ने दी है। हुलाकी सड़क अंतर्गत सप्तरी की खड़क नगर पालिका वार्ड नंबर 11 के बनौली में दो मोटरसाइकिलों के आपस में टकराने के कारण दो लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में डाकनेश्वरी नगर पालिका वार्ड नंबर 10 बनौली के 30 वर्षीय हाकिम राइन और खड़क नगर पालिका वार्ड नंबर 11 बिसहरिया के 29 वर्षीय नरेश शाह हैं। ये जानकारी इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुर ने दी है। विनोद थापा ने तेक्वांडो खेल अंतर्गत खेले जाने वाली मोस्ट मार्शल राउंड हाउस किक इन वन आवर अर्थात एक घंटे में एक पैर से सबसे ज्यादा किक मारने की विधा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस विधा में अब तक किसी ने भी रिकॉर्ड नहीं बनाया है। कैलाली की टीकापुर के खिलाड़ी विनोद थापा ने सुदूर पश्चिम प्रदेश तेक्वांडो संघ द्वारा धनगढ़ी में आयोजित कार्यक्रम में यह कीर्तिमान बनाया। उन्होंने एक घंटे में एक पैर से 2,750 बार किक मारकर नया रिकॉर्ड बनाया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांत में सरकारी ऑयल कंपनी के एक काफिले पर आतंकवादियों ने हमला किया है। हमले में अर्धसैनिक बल के 8 जवानों सहित 14 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह हमला ग्वादर के ओरमारा शहर में उस समय किया गया जब सरकारी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी का काफिला कराची के लिए जा रहा था। हमले के दौरान आतंकवादियों ने वाहनों में भी आग लगा दी थी। सुरक्षा बलों ने अपनी जान गंवाने के बावजूद काफिले को सुरक्षित निकाल लिया। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 3,93,63,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 2,94,99,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 11,05,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है जहां संक्रमितों की संख्या 82,30,000 से अधिक है जबकि मरने वालों की संख्या 2,22,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं भारत में 74,16,000 से अधिक लोगों की संक्रमित हुए हैं जबकि 1,12,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है जबकि ब्राजील में 51,70,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं जबकि 1,52,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.7 और न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। देश में किसी भी प्रकार की हत्या, हिंसा और सामाजिक अपराध को नियंत्रण करने में सरकार है प्रतिबद्ध, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। देशभर में आज 4,392 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने, 3,522 हुए संक्रमण मुक्त, 21 संक्रमितों की हुई मौत। कोरोना वायरस के इलाज में प्रयोग की जाने वाली रेमडेसिविर दवाई की आयात एवं बिक्री वितरण के लिए 3 कंपनियों को दी गई अनुमति और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला, 14 की हुई मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से मुझे आगे दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।